केदारनाथ महाराज ने सबसे पहले जो यात्रा आयोजित की थी 1986 में, जिसमें केवल 22 लोग थे, उसमें मैं भी एक था मेरी पत्नी के साथ, और उसमें सब डॉक्टर्स थे जो आज भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के संस्थापक मेंबर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज हैं। तो ये परम सौभाग्य की बात है कि कहाँ से कहाँ गुरु की कृपा हमें पहुंचा गई, कहाँ से कहाँ ले गई। और उसका एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग 1986 में तो सबसे पहले गए थे, एकदम बच्चे थे हम, जस्ट MBBS पास कर चुके थे। उसके बाद जब हम लोग 1989 में गए, 1989 में दोबारा गए थे, वो झूलन यात्रा में गए थे, और उस समय ऐसे ही बैठे बैठे ब्रजवासियों के साथ बातें हुई कि हम लोग कैंप करते हैं बम्बई में, आंखों के ऑपरेशन भी करते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास भी करो, हमारे पास बहुत लोग अंधे होते हैं, यहाँ पर कोई इलाज नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कुछ नहीं है। तो गुरु महाराज तो वैसे ही वहां वही थे, उन्होंने कहा करना चाहिए। तो हम लोग केवल 25-25 ऑपरेशन करते थे, इतना हमको अनुभव नहीं था। और 1989 में जब भी हम लोग ने ये हाँ कर दी, तो 1992 में ये पहला आंखों का शिविर वहां पर लगा, और उसमें हमने 185 ऑपरेशन किए, हमारे लिए बहुत बड़े थे। और बहुत ठंड का मौसम था, हमको पता नहीं था, तो जनवरी में हम लोग ब्रजवासियों के घर पे ही रहे, उनके जहाँ पर महाराज जी रुके थे 6 महीना के लिए, उनके घर पे हम रुके, 68 लोग रुके थे, वहीं पर खाना पीना, रहना, नहाना धोना, और वहीं सरकारी अस्पताल में हम लोग ने पहले कैंप लगाया था। तो ये महाराज ने हमको बाद में बताया कि जब उन्होंने अपने जीवन का बहुत ही श्रेष्ठ साक्षात्कार कृष्ण के विषय में जो प्राप्त किया था, वो बरसाने में मान मंदिर में किया था। और जब वो वहां पर थे तो ब्रजवासी बताते हैं कि जब वो आए थे तब उनकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी, ऐसा भाव रखती थी, और अभी जब उनको मिलते हैं तो उनकी आंखों में वो भाव है कि जो ढूंढ रहे थे वो उनको मिल गया, और वो जो मिल गया वो बरसाने में ही मिला था। इसलिए उनके मन में इच्छा थी जाने समय कि मुझे बरसाने के लिए कुछ विशेष कार्य करना है। तो जैसे ही बाय द वे ऐसी बात निकली थी, तुरंत उन्होंने हाँ कर दिया। और उसके बाद 1992 से आज 2020 में हम लोग हैं, 28-29 साल हो गए हैं, और हर साल कम से कम 1000, कभी कभी 1100-1200 ऑपरेशन कैंप में होते हैं, और साल भर में 4000 ऑपरेशन होते हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है। और जब गुरु जी संतजनों का संग होता है तो हम जैसे पतित जीवों पर भी वो कृपा हो जाती है, वो एक सुनहरा अवसर हमें भी प्राप्त हो जाता है। तो आपने बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक आरंभ किया माता जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी गुरु महाराज को वंदन करके मैं मेरा आगे का कथा आरंभ करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बरसाना धाम में प्रवेश करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें समझना बहुत जरूरी है कि जगत के नाथ जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान गोलोकेश्वर परात्पर भगवान जो सबके स्वामी हैं, उनकी चरण धूम लेने के लिए सब वृंदावन आते हैं, लेकिन वो जो स्वयं गोलोकेश्वर भगवान है वो अपने उन्नति के लिए, ये उनका भाव है, ये उनका विचार है, वो अपने उन्नति के लिए राधा रानी के धाम में बरसाना में आते हैं, और वहां की रज जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम लोग उस जगह जा रहे हैं जहां पर कृष्ण भी स्वयं जाते हैं, सखी बनकर, पुरुष रूप में जाते नहीं है, सखी बनकर जाते हैं। सखी मतलब दास्यता का भाव अपना कर जाते हैं। रस का उगम उस धाम से होता है, राधा रानी के तरफ से महाभाव का उगम होता है, रस का उगम होता है, फिर वो कृष्ण को प्राप्त होता है, फिर कृष्ण स्वयं रसराज बनते हैं, लेकिन रसराज बनने के लिए रस वहीं से प्राप्त करते हैं, और फिर वो पूरे ब्रज में और पूरे ब्रह्मांडों में ये रस का विकास करते हैं, प्रचार करते हैं। ऐसे बरसाने की कई खूबियां हैं, हम आगे जाकर आपको बताएंगे। लेकिन विशेष रूप में किस भाव से हमें ये यात्रा करनी है, क्योंकि हम अभी बंबई में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं भारत में, लेकिन हम मन से और आत्मा से बरसाने जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा शरीर यही रहेगा, लेकिन हमारी आत्मा बरसाना धाम जाएगी, जहाँ राधा रानी और कृष्ण अति उत्कट लीला करते हैं, जहाँ पर राक्षसों का प्रवेश नहीं है। राधा रानी के प्रभाव से किसी राक्षस के वहां पर पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। कारण इसका यह है कि वहां पर अति अति उत्कट, अति अति अंतरंग, अति अति प्राइवेट अति अति उत्कट यहाँ पर कोई बात कर रहे हैं। श्रेया अग्रवाल जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण। उनको आपको फोन करके बताना पड़ेगा, यहाँ से नहीं हो रहा है शायद वो। एनीवेज, तो श्री राधा एक संत थे, वो पूरे ब्रज में अपने हाथ से ये राम निकालते थे। ये उनके लिए विग्रह था, मतलब दिस इज द डीटी फॉर हिम, राधा नाम। पूरे ब्रज में, पेड़ों में, दीवालों में, सब जगह पर ये नाम लिखा गया है, क्योंकि राधा नाम ही श्री कृष्ण का सर्वस्व है। हमारा भी सर्वस्व है, लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण का भी सर्वस्व है। ये उन्हीं की साधना है, इसी नाम को वो जपते हैं और राधा रानी के चरणों को हृदय में ध्यान करते हैं। और श्री कृष्ण भगवान तो मुरली के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन राधा रानी उनकी मुरली की गुरु हैं। वो मुरली मनोहर हैं, लेकिन मुरली मनोहर के गुरु जो है वो राधा रानी है। यहाँ तक कि वो नटवर किस रूप में जाने जाते हैं, नटराज, सबसे नृत्य में निपुण है वो, लेकिन नृत्य कला उन्होंने राधा रानी से सीखी है। और ये सब रहस्य की बातें हैं। श्री कृष्ण को प्राप्त करना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम योजनः परियुपासते तेषां वित्ता नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो 100% शत प्रतिशत जो शरणागत होता है उसी को कृष्ण भगवान कृपा देते हैं। लेकिन 100% शरणागत नहीं होने पर भी राधा रानी हमको स्वीकार करती है और उसके बाद में कृष्ण को अर्पण करती है। तो ये यहाँ का रहस्य है। देखिए, राधा रानी कृष्ण को मुरली बजाना सिखा रही है। तो ये छोटा सा मैप है, आप देखते हैं कि श्रीजी मंदिर सबके टॉप में है, फिर ये चार पर्वत शुरू होते हैं, फिर जयपुर का मंदिर है, फिर दानगढ़ है, नीचे विलासगढ़ है, आगे जाकर मोरकुटी है, फिर कृष्ण कुंड है और मानगढ़ है। ये एक एरियल नजारा है। कैसे? खोर, किरक और गिरी गहवर, ये चार चीजें वृंदावन बरसाने में बहुत महत्वपूर्ण है। खोर यानी नैरो लेन, सांकरी गली, और किरक यानी जलाशय, यानी पीली पोखर, बिहार कुंड, धोनी कुंड और कीर्तिदा कुंड और जल महल, इस प्रकार के जलाशय। और तीसरा है गिरी, यानी चार सुंदर पर्वत की चोटियां हैं वहां पर। और गहवर यानी वो जो सबसे पहला ऊपर मंदिर है राधा रानी का, लेकर यहाँ तक जो वन है उसको गहवर वन कहते हैं, जो राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया है। तो ये देखिए, ये ड्रोन से लिया हुआ पिक्चर है। इसका रहस्य क्या है? ब्रह्मा जी ने अपने जन्म के बाद में 120,000 साल तपस्या की थी। उसके फल के स्वरूप कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि आप बरसाने में जाकर पर्वत बन सकते हो। आज तक के इतिहास में किसी ने सर्वोच्च पद से नीचे आने के लिए तपस्या नहीं किया है, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे हमारे आचार्य हैं जिन्होंने सर्वोच्च पद पर होते हुए भी एक पत्थर बनने के लिए, एक यक्षश्चित निर्जीव पत्थर बनने के लिए यहाँ पर तपस्या करके पत्थर बने हुए। देखिए आप, चार शिखर हैं बरसाने के, भानुगढ़, विलासगढ़, दानगढ़ और मानगढ़। ये देखिए, दूर दूर तक आप दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे लेफ्ट में जो येलो है वो दानगढ़ है, सबसे राइट में एकदम आगे है विलासगढ़ है, बीच में जो है मोरकुटी है, और सबसे राइट राइट कोने में जो है वो मानगढ़ है। और आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी हम नजदीक आ गए, ये सबसे सामने जो है वो मोरकुटी है, उसके पीछे जो व्हाइट बिल्डिंग है वो विलासगढ़ है, और राइट साइड में अगर दिखाई पड़ता है तो वो मानगढ़ है, फिर दोबारा थोड़ा क्लोज आ गए हम, लेफ्ट में दानगढ़ है, आगे जाकर विलासगढ़ है, और ये सबके सामने आपके विलासगढ़ का दर्शन है सबसे नजदीक से। और ये हमारा श्री जी का मंदिर है भानुगढ़, यहाँ पर श्री जी अपने माता पिता, बड़े भाई श्रीदामा और छोटी बहन अनंग मंजरी के साथ रहा करती थी। बहुत ही सुंदर ये महल है भानु जी का, यहाँ पर अभी मंदिर है जहाँ पर श्री जी रहा करती थी, उनका वो निवास स्थान था। यह आ गया राधा रानी का मंदिर, ये प्रिया शरण जी बाबा की प्रेरणा से उसका जीर्णोद्धार किया था। इसको कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ जी ने स्थापन किया था, इनके विग्रह भी उन्होंने बनवाए थे। यथावकाश को लुप्त हो गए थे तो नारद मुनि के अवतार नारायण भट्ट गोस्वामी, जिनका जन्म ऊंचे गांव में हुआ था, उन्होंने यहाँ पर उसको प्रकट किया। फिर ये हो गया दानगढ़, यहाँ पर जयपुर मंदिर भी कहते हैं इसको, इसमें राधा कुशल बिहारी का दर्शन है। फिर ये है विलासगढ़, इसमें भाग भगवान झूला खेलते हैं, रास रचाते हैं, बहुत सुंदर विलास लीला करते हैं। और ये हो गया मान मंदिर, यहाँ पर सबसे ज्यादा अति उत्कट अति अंतरंग जो लीला है वो यहाँ पर है। यहाँ पर राधा रानी मान करती है, मान करती यानी हम लोग क्रोध करते हैं, लेकिन राधा रानी मान करती है। मान का और क्रोध का अंतर यह है, क्रोध स्वार्थ के लिए होता है और मान जो है वो कृष्ण के प्रेम की वृद्धि करने के लिए होता है। और ये पांचवा शिखर जो है वो मोर कुटी है, यहाँ पर भगवान मोर लीला करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर संध्या का दृश्य है, सूर्यास्त के समय श्री जी महारानी का ये मंदिर आपको दर्शन दे रहा है। ये बारिश के समय का दर्शन है, बहुत सुंदर। और ये बरसाना धाम है, श्री बरसानो धाम जय जय श्री राधे, श्री बरसानो धाम जय जय श्री राधे, महारानी को गाँव जय जय श्री राधे। यहाँ पर राधा रानी के सबसे प्रिय जीव जो है वो जन्म लेते हैं, जो उनको उनके भक्ति में अपने आप को लीन कर चुके हैं, वो सब का आखिरी जन्म के रूप में वो बरसाने में जन्म लेते हैं। तो सब भाग्यशाली जीव हैं, देवता लोग उनको चतुर्भुज मुक्त वैकुंठवासी जीव के रूप में देखते हैं, हम दो भुजा के रूप में देखते हैं। तो बरसाना के प्रवेश करने के पहले हम उनका मंत्र जपते हैं। ये सब मंत्र जो है वो ब्रज भक्ति विलास इस ग्रंथ में दिए हैं, नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा रचित। ओम क्लौं विषभानुपुर अधिवनपतये राधा कृष्णाय स्वदाहा, राधाय संहितं कृष्णं ब्रह्म पर्वत संस्थितं, वंदे प्रदक्षिणं सांग सर्वदा वरदायकम्। इसका अर्थ यह है कि हम राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं, ब्रह्म पर्वत पर जो संस्थितम है यानी कि स्थापन है, हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये सबसे अधिक वरदान देने वाला है, राधा कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाला है। ये हमारे ब्रह्मा जी हैं, सबसे पहले पर्वत पर चढ़ने के पहले ब्रह्मा जी को नीचे से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी सभी संप्रदायों की और हमारे संप्रदाय के भी प्रथम आचार्य हैं। तो हमारे प्रथम आचार्य वहां पर पत्थर बनकर बैठे हुए हैं, पर्वत बनकर बैठे हुए हैं, उन पर चलकर हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और ये वादा करते हैं कि हम ऊपर जाएंगे और केवल राधा रानी का दर्शन करेंगे, उनकी लीलाओं की कथा सुनेंगे। और हमें अभी इस हमारे कथा के दौरान 50 बार प्रणाम करना होगा, तो तत्पर रहिए और प्रणाम कीजिए और ब्रह्मा जी की कृपा लेकर उनको क्षमा मांगते हुए कि आपके शरीर पर हम चढ़ने वाले हैं, उनकी क्षमा याचना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके हमें क्षमा कीजिए, हम आप पर अपने कदम रखने वाले हैं, लेकिन केवल राधा रानी को दर्शन करने के लिए हम करेंगे। हमें तृण से भी अधिक नम्र बनने की प्रेरणा देना और मन में हमारे जो भी गर्व है अहंकार है उसको नष्ट करते हुए केवल कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सेवा देना। और रजोगुण और तमोगुण जो शहर में होता है उसे हम त्यागना चाहते हैं और सखी भाव सेवा भाव दास्य भाव में हम बरसाने में प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसी विनती करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम अभी श्री जी मंदिर को चढ़कर आए हैं। आपके सामने वो जो छतरी दिखाई पड़ रही है संगमरमर की मार्बल की, उसमें साल में 3 बार राधा रानी नीचे आती है। एक है हरियाली तीज, उसके बाद दूसरा है होली और तीसरा है राधाष्टमी। और इस दिन राधा रानी नीचे सीढ़ी उतर के आती है और गोस्वामी पुरुष पूजा नहीं करते हैं, लेकिन गोस्वामियों की लड़कियां कन्याएं पूजा करती हैं, उसको आरता कहते हैं। जब ऊपर मंदिर में पूजा होती है तो उसको आरती कहते हैं। अभी हम वहां से ऊपर चल रहे हैं और हम मंदिर श्री मंदिर जगन जगन मोहन मंडप में पहुंचे हैं। अंदर फोटोग्राफी करना मना नहीं है, छुप छुप के निकाला हुआ फोटोग्राफ है। ये मंगल आरती का दर्शन है और श्री जी के मंदिर में अभी आप भानु महल में पहुंच चुके हैं। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर दीजिए, हरे कृष्णा जय श्री राधे। और अभी श्री जी इसके पीछे हैं और देखिए आपको दर्शन हो रहा है राधा रानी का, लाडली लाल जी का। ये विग्रह स्वयं वज्रनाभ ने बनाए थे, नारायण भट्ट जी ने उनको ढूंढ के निकाले थे। कृपा करके प्रणाम करना, हे राधे वृषभानु नंदिनी करुणामयी कृपा करो, हे राधे कृपा करो। हमसे दीन न कोई जग में हाल दया की फनक करो, राधे किशोरी दया करो। लाल जी आप देख रहे हैं एक चुनरी राधा रानी ओढ़ के रखी है और एक बड़ी चुनरी जो है पीछे ओढ़ के रखी है, वो कृष्ण के लिए है। कृष्ण यहाँ पर सखी भाव में रहते हैं, ये इसका प्रतीक है। बहुत ही सुंदर दर्शन है। एक जगह पर ऐसे भी लिखा है कि वो घर जमाई बैठकर यहाँ पर बनकर यहाँ पर रह रहे हैं और दूसरी जगह लिखा है कि वो सखी बनकर राधा रानी का संग दे रहे हैं। यहाँ पर बरसाने में कोई भी पुरुष में शरीर में नहीं प्रवेश कर सकता है। ये अभी अभी का दर्शन है राधा रानी और कृष्ण का। ये विशेष दर्शन जब 56 भोग होता है तो बाहर आते हैं और ये जन्म का दर्शन है राधा रानी का। और ये देखिए 2020 राधाष्टमी 26 अगस्त के दिन ये राधा रानी का चित्रपट है और जो विग्रह वहां पर विराजमान है उनके चरण कमलों का दर्शन दीजिए। अति अति दुर्लभ दर्शन ही है, सब लोग छूकर दर्शन करना। मन याद करो, मन याद करो राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन याद करो, मन याद करो। जो कृष्ण के भी स्मरणीय हैं, जो कृष्ण भी हृदय के आंगन में जिनका स्मरण करते हैं इन राधा रानी के चरणों को पूर्ण हृदय से शत प्रतिशत वंदन करो, अपने आप को समर्पण समर्पण करो। और ये राधा रानी का मुख कमल है, बहुत ही दुर्लभ चित्र है ये। और इसमें आप देखिए अभिषेक का दही भी गिरते हुए आपको नजर आ रहा है, तो अभिषेक के समय निकाला हुआ चित्रपट है। जब आज तक कभी ये भाग्य नहीं हुआ जो अभी इस समय इस साल प्राप्त हुआ। तो राधा रानी के सामने क्या प्रार्थना करेंगे, नमः प्रियाये राधायै ब्रह्मणो वरदायिने सर्वेष्ट फल रम्याय राधा कृष्णाय मूर्तये। हे राधे हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आपने ब्रह्मा जी को वरदान दिया है, ये उनके पूर्ण तपस्या का फल है, आप हमें भी वैसे ही वरदान दीजिए। और आप आरती ले लीजिए, ये मंगल आरती की आरती हो रही है, आप उनको आरती जरूर लीजिए। सबका ध्यान यहाँ पर रखिए, कहीं यहाँ वहां देखिए नहीं, अभी आरती का दर्शन आप करिए हाथ जोड़कर हरे कृष्णा। और ये जो नीचे है आरती के वो बरसाने की ब्रज रज है, जो बरसाने की रज में वो माउंड बनाते हैं उसके ऊपर वो दीपक लगाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं राधा रानी के मंदिर में। क्या क्या देखना है आपको राधा रानी के मंदिर में, पीछे एक स्थान है जहाँ का फोटोग्राफ मेरे पास नहीं है, लेकिन राधा रानी वहां खड़ी रहती है और नंदगांव की ओर इशारे करती हैं, तो उनके चरण कमलों के स्पर्श से वहां पर पत्थर पिघल जाता है, तो वहां पर उनके चरण चिन्ह है। ब्रह्मा जी के मंदिर के नीचे भी उनके चरण चिन्ह है और संगमरमर की छतरी है और गर्भगृह में राधा रानी श्याम सुंदर के साथ विराजमान है। आगे हम बढ़ेंगे तो ये एक वहां पर पेड़ आएगा। अभी हम राधा रानी के मंदिर से जयपुर के मंदिर दानगढ़ में जा रहे हैं। इस स्थान पर नारायण भट्ट गोस्वामी जी को राधा रानी के विग्रह प्राप्त हुए थे। आज जो मंदिर में है वो इस जगह के अंदर शिला के अंदर विराजमान थे, तो इस जगह को प्रणाम कीजिए, ये राधा रानी प्राकट्य स्थल है। हरे कृष्णा। देखिए लिखा है श्री स्वामी जी महाराज विराजमान नारायण भट्ट नारायण दास के तपस्या स्थल राधा रानी प्रकट स्थल। फिर हम पहुंचेंगे अभी जयपुर मंदिर में। देखिए थोड़ा सा गौर से देखिए इस मंदिर को कितने खूबसूरती से बनाया है, कितने सालों के बाद में हाथी पर पत्थरों को ढोकर पर्वत पर लेके जाकर कई सालों तक बहुत ही सुंदर कला कुसर से काम किया हुआ है। एक एक चीज इतनी महीन और सुंदर बनाई गई है, देखिए कितने प्रेम से और कितनी भावना से बनाया है इसको। 400 साल पहले ये मंदिर बनाया गया था, सवाई माधो सिंह जिनके नाम पे रेलवे स्टेशन भी है वो ये महाराज हैं। इन्होंने ये मंदिर बनाया था, कारण ये था राधा रानी का मंदिर उस समय जीर्ण हो गया था, इसलिए उन्हें सोचा कि दानगढ़ पे जगह है तो वहां पर एक भव्य मंदिर बना देते हैं। बहुत साल तक मंदिर बना, उसके बाद में राधा रानी जिस दिन मंदिर में स्थापन होने वाली थी उसके पहले दिन रात को स्वप्न में आई राजा के, और उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि वो तो मेरा निज धाम है, भानुगढ़ में मेरा महल है और मैं वहीं रहती हूँ, मैं वहां से यहाँ नहीं आ सकती। अगर हम होते तो कहते कि पहले क्यों नहीं बताया, इतना सारी मेहनत करने के पहले बताते तो उतनी सारी मेहनत नहीं करते। लेकिन राजा का भाव क्या था, राजा का भाव था कि राधा रानी के आनंद के लिए बनाया था और अगर उनका आनंद उनके ही मंदिर में रहने के लिए है तो हमारा भी आनंद उसी में है। तो उन्होंने वहां पर दूसरे विग्रह लगाए जिनका नाम है राधा कुशल बिहारी जी। तो हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये केवल ऐसा साधारण मंदिर नहीं है, इसमें बहुत गहरी भावना है। ये भावना है Thy will be done, आपकी इच्छा हमारे सर आंखों पर, हमारी इच्छा कुछ भी हो लेकिन आपकी इच्छा सर आंखों पर। तो यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि हमें निस्वार्थ भावना से सेवा करने की प्रेरणा दीजिए, हमारी इच्छा कभी भी आपकी इच्छा के ऊपर न चले जाए, आपकी इच्छा ही हमारे सर आंखों पर हमेशा विराजमान रहे और आपका ही आनंद, सम सिद्धिर हरि तोषणम सम सिद्धिर राधा तोषणम, यही हमारे जीवन का एकमेव लक्ष्य हो, ऐसी प्रार्थना करके हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इस रास्ते से हमें दानगढ़ दर्शन होगा। दानगढ़ का झूला है ये, और ये दानगढ़ में रास मंडल भी है, दानगढ़ पे ये रास मंडल है, ये झूला का दर्शन है और ऊपर से देखिए रास मंडल और झूला साथ में दिखाई पड़ रहा है और ये राधा दान बिहारी जी हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान जा जाकर राधा रानी से दान मांगते हैं, प्रेम का रति का दान मांगते हैं। यहाँ पर एक ब्राह्मण थे जो राधा रानी जब ब्राह्मण थे वो तीन उनको कन्याएं थी, वो कृष्ण को विनती कर रहे थे रो रो के कुछ दे दो कुछ दे दो, मुझे तीन कन्याओं का विवाह करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। तो कृष्ण ने सोचा मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो सोचा कि मेरे पास एक धन है वो है राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो राधा जी को उनको दान दे दिया। तो ब्राह्मण पहले जितना रो रहा था उससे बहुत जोर से रोने लगा, अरे पहले तीन थी अभी चार हो गई, तीन की विवाह करने की समस्या थी, चार की विवाह कैसे करूंगा। तो कृष्ण को दया आई, उन्होंने राधा रानी को तराजू में बिठाया, सब गोपियों को अपने अलग घर उतारने को कहा और अगले पलड़े में डाला, तो फिर भी राधा रानी का पलड़ा भारी रहा। फिर उसमें तुलसी अर्पण की गई तो पलड़ा इक्वल हो गया, तो सारे जो अलंकार थे वो ब्राह्मण को दान दिए गए। ये लीला इस धाम की है और यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण बहुत दान लीला करते हैं। कृष्ण बहुत ही याचक बनकर यहाँ पर भिक्षा मांगते हैं, चरणों में गिरते हैं, प्रेम से प्रेम देने के लिए कहते हैं, रति दान करने के लिए कहते हैं। तो हमें भी बरसाने में एक भिक्षुक बन के जाना चाहिए, एक याचक बन के जाना चाहिए, मांगने के लिए प्रेम की, प्रेम और भक्ति मांगने के लिए यहाँ पर जाना चाहिए। तो राधा दान बिहारी को प्रणाम कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मैं यहाँ पर प्रेम और सेवा की भिक्षा मांगता हूँ और मुझे कभी भी जैसे कृष्ण बिना ही संकोच के दान मांग रहे हैं, मुझे कभी भी कृष्ण के लिए दान मांगने के लिए संकोच नहीं होना चाहिए और आपकी सुंदर दान लीलाएं सदैव मेरे हृदय में प्रकाशित होते रहें, ये भी मेरी प्रार्थना है। और आपकी दान लीला में अगर मुझे कोई सेवा करने का मौका मिला तो मैं एक तुच्छ जीव बनकर, तुच्छ औजार बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृष्ण के लिए दान मांगने के लिए मुझे कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक रास लीला जब हुई थी तभी ललिता जी को बहुत प्यास लगी थी, तो कृष्ण ने पत्थर में से कुआं बनाकर सुंदर मीठा जल उत्पन्न किया था और ललिता जी को पिलाया था। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं इस रास्ते से और विलासगढ़ पहुंचते हैं। विलासगढ़ में बहुत सुंदर सुंदर विलास लीलाएं हैं, नाम कैसा है वैसे ही, रास मंडल है, झूला है और बहुत नटखट चटपट लीलाएं हैं। एक बार यहाँ पर राधा रानी का दरबार लगाया गया, राधा रानी को क्वीन बनाया गया और ललिता जी मंत्री बनी और सब सखियों ने अपना अपना मंत्री पद ले लिया और उसमें एक चोर को पकड़ के लाया गया, चोरी के इल्जाम में वो थे हमारे श्याम सुंदर जी, और उसका मुकदमा लड़ाया गया और ललिता जी उसमें जज बनी और बहुत देर मुकदमा लड़ाया गया, आगे पीछे संवाद बात किया गया। उसके बाद क्वीन राधा रानी ने उस मुलजिम को बरी कर दिया, मुक्त कर दिया, हाँ फ्री कर दिया उसको, माफ कर दिया उसको। तो ऐसे सुंदर सुंदर चटपटी लीलाएं यहाँ पर होती है विलासगढ़ पे। तो विलासगढ़ के इस रास मंडल को प्रणाम करते हैं, बहुत सुंदर दर्शन कीजिए। यहाँ पर अक्सर आदमी पहुंच नहीं पाता है, वैसे रास्ता अभी भी रास्ता बना हुआ है, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ पर जाना। तो ये विलासगढ़ का दर्शन है, देखिए बहुत सुंदर रास मंडल का दर्शन है। और ये विलासगढ़ का वन है, और हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनिए। विलास रूपिणे तुभ्यम नमः, कृष्णायते नमः, सखी वर्ग सुप्ताय सुप्ताय क्रीडा विमल दर्शिने, सखी वर्ग सुप्ताय क्रीडा विमल दर्शिने। हे विलासगढ़, आप सखियों को और कृष्ण को बहुत आनंद देते हो, आप कृष्ण के लिए बहुत आनंद के स्रोत हो, आप बहुत शुद्ध हो, मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं मोरकुटी की तरफ। और यह है मोरकुटी, वहां से 5 मिनट का रास्ता है, किसी प्रेमी भक्तियों ने पत्थर में इतना सुंदर रास्ता बनाया है ताकि हमको पहुंचने में कष्ट नहीं हो। और आपको जो दर्शन हो रहा है, ये जो वन है इसको गहवर वन कहते हैं, राधा रानी ने स्वयं इसको बनाया है अपने हाथों से। और ये मोरकुटी है, और देखिए बहुत नजदीक से, और यहाँ पर ये सुंदर मोर लीला का दर्शन है। इसकी कथा हम मान मंदिर में आपको बताएंगे, फिर आपको दोबारा बताएंगे। लेकिन ये चित्रपट जो है यही वहां पर विग्रह स्थल में है, यही इसकी पूजा होती है, इसको वस्त्र पहनते, इसको अलंकार पहनते हैं। यहाँ पर राधा और कृष्ण मोर और मुरली बनकर नाचते हैं, बहुत ही सुंदर। और इसके आगे हम चलते हैं चौथे शिखर पर, इसका नाम है मानगढ़, राधा मान बिहारी लाल। बहुत सुंदर सीढ़ियां हैं, और यह उसका प्रवेश द्वार है मानगढ़ का। फिर हम अंदर प्रवेश करते हैं मानगढ़ के, यहीं पर हमारे राधाना स्वामी महाराज इसी स्तर पर, इसी लेवल पर, इसी, अभी तो टाइल लगा दिया, उस समय तो मट्टी थी, उस समय रमेश बाबा और राधाना स्वामी महाराज और सखी शरण बाबा ये सब लोग यहाँ पर विश्राम करते थे रात को। और ये आपके लिए राधा महान बिहारी का दर्शन है। राधा मान बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय हो। तो मान मंदिर को, इनको देखिए आप प्रेम से, और इनको हम प्रणाम करेंगे अभी मंत्र बोलकर। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इनका श्रवण करने से, उच्चारण करने से बहुत ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। देखिए, देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधायिने, मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमये। राधा ने यहाँ पर मान लीला की, इसलिए इस जगह के नाम मान मंदिर रखा गया है। देवता और गंधर्व भी यहाँ पर आकर अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। हे मान मंदिर, हम आपको प्रणाम करते हैं। और देखिए मान मंदिर की लीला क्या है, राधा रानी रूठ जाती है, मान कर जाती है, श्री कृष्ण उनको बनाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनके चरणों को अपने अश्रुओं से स्नान कराते हैं, अपना मोर मुकुट उनके चरणों में रखते हैं। इतना करने पर भी नहीं मानते तो उनके चरणों में लोटपोट हो जाते हैं, उनके चरणों के नीचे जो जमीन है, वो जो मट्टी है, उसमें लोटपोट हो जाते हैं। रोल्स इन द डस्ट अंडर द फीट ऑफ राधा रानी। देखिए कितना नम्र बनकर, कभी कभी सखी बनकर राधा रानी को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये फोटोग्राफ देखिए बहुत नजदीक से, इसमें ललिता जी रूठी हुई राधा रानी के हाथ में कृष्ण का हाथ दे रही है, और राधा रानी उनको देख भी नहीं रही है। कृष्ण बहुत उदास हैं, सब सखियां कुछ ना कुछ करके राधा रानी को रिझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो रिझा नहीं पा रही हैं। कृष्ण को यश नहीं आ रहा है उनको मनाने में। तो उसके बाद में क्या हुआ, देखिए उसके बाद में ललिता ने कृष्ण के कान में कुछ कहा, और कृष्ण तुरंत वहां से चले गए, और ललिता भी चली गई। तो फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस जगह पर एक मोर आया, हाँ इस जगह पर एक मोर आया, और वो सुंदर नृत्य करने लगा। फिर राधा रानी को सखियों ने कहा, देखो देखो इतना अच्छा मोर आया है, देखने को तैयार नहीं है। फिर बहुत मनाया, फिर वो देखने लगी, फिर मोर को बड़ा उत्साह आया, उसने बहुत सुंदर नृत्य किया, बहुत सुंदर नृत्य किया, बहुत सुंदर नृत्य किया। राधा रानी अपना मान भूल गई। उसके बाद में राधा रानी भी मोर को ज्वाइन हो गई, मोरनी बनकर, और फिर बहुत देर तक नृत्य किया। कृष्ण ने मोर बनकर, राधा रानी ने मोरनी बनकर, लेकिन राधा रानी को पता नहीं कि मोर कौन है। बहुत देर बाद ये पोजीशन में जब आ गए, बहुत नजदीक आ गए, तो पता चला कि ये मोर और कोई नहीं कृष्ण है। तब तक तो मान उनका समाप्त हो चुका था। तो ये सुंदर लीला जो है वो मान मंदिर के सामने जो मोरकुटी की चोटी है उस पर होता है, और रोज यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मोर लीला होती है। समझिए कभी कृष्ण और राधा रानी अपने अपने मोर और मोरलियों को लेकर आते हैं और उनको नचाते हैं, एक लीला। कभी स्वयं मोर और मोरनी का भेष पहनकर नृत्य करते हैं, कभी स्वयं मोर बनते हैं और राधा रानी स्वयं मोरनी बनती है और बाकी मोर मोरनियों के साथ मिलकर नृत्य करते हैं। और क्या होता है वाद्य यहाँ पर, राधा रानी के कंगन, कृष्ण की मुरली और राधा रानी की पायल, इतने ही तीन चीजों से पूरा वाद्य संगीत बनता है और यहाँ पर नृत्य होता है। यहाँ पर बादल आते हैं, मोर कुकू करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होती है। तो ये लीलाएं जो है ना, वहां पर एक अंधा बाबा था मोरकुटी, ये चित्रपट जो आप देख रहे हैं ना, ये उस अंधे बाबा ने बनाया है। राधा रानी ने स्वप्न में उसको मोर लीला का दर्शन दिया और कहा कि आपको चित्र बनाना है, तो वो कहा कि मैं अंधा हूँ। राधा रानी ने कहा कि मेरी कृपा से आप इसको बना सकते हो। तो राधा रानी की कृपा से अंधे भक्त ने ये चित्रपट अपने हाथों से बनाया और फिर इसी फोटो को वहां रखकर उसकी पूजा की जाती है। उसका एक सिंह था जो उसका शिष्य था, और उसके सिंह के गले में झोली डालकर वो मानपुर में जाकर भिक्षा करता था और अपने गुरु के लिए रोटी लेके आता था। फिर गुरु महाराज रोटी को इस चित्रपट को अर्पण करते थे, खुद खाते थे और सिंह को भी देते थे। ऐसी अद्भुत लीला इस मोरकुटी पे है। नित्य नियम से हर क्षण वहां पर भगवान मोर बनकर नाचते हैं, और लेकिन उसका आरंभ जो है वो मान मंदिर में होता है। इसलिए यहाँ का दर्शन बहुत जरूरी है। यहाँ पर राधा रानी मान करके रूठ जाती है, केवल कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, जैसे हम लोग क्रोध करते हैं। केवल जो महाभाव है उसमें 8 प्रेम के भाव है, रति, प्रेम, स्नेह, राग, अनुराग, भाव, महाभाव और मान। तो 8 में से एक है मान, और उसमें से बनता है महाभाव, उसका उगम राधा रानी की तरफ से होता है, केवल कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए। अलग अलग प्रकार के भेष धारण करते हैं, छद्म धारण करते हैं राधा रानी को रिझाने के लिए, और राधा रानी के चरणों का भी मालिश करते हैं, सेवा करते हैं। तो यहाँ पर हम ना, ये तो बहुत बड़ा उत्कट स्थान है, यहाँ पर एक गुफा है जहां पर वो जाकर रूठ कर बैठती थी। मैं आपको उसका वीडियो बाद में दिखाऊंगा, हो सकता है तो अभी भी दिखा सकता हूँ। आप जरा 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पहाड़ के अंदर है, ठीक से देख लीजिए, वे अंदर जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। दया करो, ये है। राधा रानी की गुफा, जहाँ पर राधा रानी मान करके बैठती थी और कृष्ण उनको बनाते थे। हरे कृष्णा, जरा अंगूठा ऊपर करके बताइए मेरी आवाज आपको आ रही है ना? यस, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं कि हृदय से प्रार्थना कीजिए कि किसी भी प्रकार के अहंकार से हमें मुक्त होना है। हमारी सारी जो इमोशंस हैं वो केवल आपके लिए होनी चाहिए, आपके आनंद के लिए होनी चाहिए। और जब भी आपकी इच्छा हो तो आपके द्वारा मेरा अहंकार नष्ट होने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्रशिंग कहते हैं। हाँ, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम। जब भी आप चाहे तो मेरे अहंकार को आप चूर कर सकते हैं। ऐसी आप यहाँ विनती करना, प्रार्थना करना और सारी भावनाओं को कृष्ण के और राधा रानी के चरणों में अर्पण करके हम अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यही वो रास्ता है राधा रानी के मंदिर से मान मंदिर तक, जहाँ से हमारे गुरुदेव चले थे। उस समय उनको बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव हुए थे, यहाँ इस रास्ते पर ही हुए थे। फिर मान मंदिर जब पहुंचे तो देखिए महाराज जी प्रणाम कर रहे हैं मान मंदिर में। इसी स्तर पर वो रहे थे 6 महीने के लिए, उस गुफा में भी वो भजन करते थे। और ये है परम पूज्य परम विरक्त संत रमेश बाबा जी महाराज। मैंने आज तक देखे हुए सब संतों में सबसे निर्भय संत, सबसे क्या कहते हैं उसको, मोस्ट बोल्ड एंड करेजियस सेंट रमेश बाबा जी महाराज। बहुत ही अपने उम्र के 12 साल की उम्र में यहाँ पर आए थे आप, क्योंकि 1952 में आए थे, 48 + 20 68 ईयर्स उनको हो गए। तब यहाँ पर डाकू रहा करते थे मान मंदिर में, अपना माल वहां पर छुपा के रखते थे। ये जब गए तो उनको बंदूक दिखाई गई तो उन्होंने कहा अरे मार दो, मरने के लिए तो आए हैं। सबसे बड़ा उत्तर दिया उन्होंने, फिर सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का होता है। बंदूक तान पर सीने पे रख दिया, गोली चला देंगे, चला जाओ, चले जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा मरने के लिए तो आए हैं, चला दो गोली, राधा रानी की इच्छा हो तो मर जाएंगे नहीं तो जियेंगे। और गया कौन, सब डाकू चले गए और महाराज जी वहां बस गए। अभी वहां पर बहुत सुंदर वातावरण, बहुत भक्तों का समुदाय, कम से कम 200-300 संत लोग रहते हैं और 200-300 कन्याएं रहती हैं, गोपियां रहती हैं, भजन करती हैं दिन रात, राधा रानी का नाम जपती हैं। संत के होने से सब कलमश नष्ट हो जाते हैं। एक संत के होने से, एक संत की आवश्यकता होती है, एक प्रामाणिक साधक की आवश्यकता होती है। तो इनके चरणों में हमने भी बहुत संग लिए संग किया है और महाराज जी ने इनके चरणों में अपने जीवन के परम साक्षात्कार को प्राप्त किया। और यही हमारी लच्छो दीदी, जिनके घर में हमारे महाराज जी भिक्षा करते थे, महाराज जी कहते हैं कि लच्छो दीदी यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी लच्छो दीदी, इनके हाथ में हाथ हाथ की रोटी खाना ये सबसे जीवन का परम भाग्य का लक्षण है। तो हमने राधानाथ महाराज जी के साथ यहाँ इस किचन में बैठकर हाथ की रोटी अनंत बार खाई है महाराज जी के संग बैठकर बैठते हुए। ये ब्रजवासियों का प्रेम है, उन्होंने कहा कि वो बाकी जब लोग आते हैं तो वो बेलन से रोटी बनाते हैं, लेकिन जब खास लोग आते हैं तो हाथ की रोटी बनाते हैं। ये उनका प्रेम का प्रकट है। तो ये हमारे लिए हमेशा महाराज जी के लिए हाथ की रोटी बनाती है, ये उनका चूल्हा है। लक्ष्मी दीदी महारानी की जय हो। उसके आगे हम चलेंगे पर्वत को उतरते हुए, हम पर्वत से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ये है दोहनी कुंड। दोहनी कुंड का मतलब है वृषभानु महाराज की जो गायें थी उनका दोहन, दूध निकालने का कार्य यहाँ पर होता था। यहाँ पर कृष्ण एक बार आए थे और उन्होंने राधा रानी से विनती की थी कि मैं आपकी गाय का दूध निकाल सकता हूँ क्या? तो राधा रानी बड़ी खुश हो गई थी, उन्होंने बछड़े को पकड़ा उस गाय के और कृष्ण ने बहुत अच्छी बैठक लगाई, पैरों को डोरी लगाई और बहुत ही कुशलता पूर्वक दूध निकालना आरंभ किया। और राधा रानी बड़ी मग्न होकर उनको देख रही थी, कितनी कुशलता से दूध निकालते हैं। ऐसे दो रहे थे तो अचानक एक जो थन था वो ऐसा टेढ़ा कर दिया और उसकी पिचकारी राधा रानी के मुंह पर लगा दी और राधा रानी की आंखों में दूध गया। बहुत देर तक वो संभ्रमित रही, शी वाज सो कंफ्यूज सडनली व्हाट हैपेंड। राधा रानी के लिए कृष्ण ने यहाँ पर बहुत सुंदर प्रेम लीला की। और ये जो पूरा ये आपको जो कुंड दिख रहा है ना, इसमें पूरा भक्ति विधान तो हॉस्पिटल खड़ा हो सकता है, इतना ये गहरा और विस्तार पूर्वक है। इट इज सो डीप एंड ब्रॉड दैट द होल भक्ति विधान तो हॉस्पिटल कैन फिट इन दैट बिफोर द ग्राउंड लेवल। और यहाँ पर सभी लाखों गायें इसका दूध निकालते थे और इस कुंड में उसको स्टोर करते थे। हमारे घर में कैसे होता है, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर का पॉट होता है। हाँ, विश्वानु महाराज कुंड में अपना दूध स्टोर करते थे। तो दोनी कुंड को प्रणाम करते हैं। रक्त नील सित धूम्र पीत गो दोहन प्रद वृषभानु कृत तीर्थ नमस्तुभ्यम प्रसीद में। सब लोग हाथ जोड़िए। लाल रंग की, नीले रंग की, सफेद रंग की, ऐश कलर की या पीले रंग की, ऐसे अलग अलग रंगों की गायों का यहाँ पर दूध निकाला जाता है। और इस जगह बहुत पवित्र है, इस जगह को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर आप हमेशा प्रसन्न रहे। ऐसे हम धोनी कुंड को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं बहुत सुंदर जगह पर जिसका नाम है सांखरी कोर, जो चार पर्वत है। तो जब बीच में एक बार मिलते हैं तो ये सांखरी यानी छोटी सी नैरो जगह बन जाती है, जिसमें एक व्यक्ति एक समय एक दिशा में जा सकता है, दो व्यक्ति नहीं जा सकते हैं, दो दिशा में नहीं जा सकते हैं, एक समय पर केवल एक व्यक्ति एक ही दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो क्यों ऐसा बनाया है? क्योंकि राधा रानी एक तरफ से आती है, कृष्ण एक तरफ से आते हैं, मार्ग रोक लेते हैं। ये राधा रानी की छतरी है, ये वो सांकरी को रहे, देखो वहां से बरसाना है। जिस तरह से लोग दो आदमी आ रहे हैं और उसके उल्टी तरफ नंदगांव है, तो नंदगांव की ओर से कृष्ण आते हैं बरसाने की ओर से राधा रानी आती है, और बीच में कृष्ण भगवान उनको रोक लेते हैं। इसमें सुंदर एक भजन हमारे मदन मोहन जी गाते हैं, बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बावरो कान्हा बावरो, बरसाने की गलियन में डोले कान्हा बावरो कान्हा बावरो। क्या अर्थ है इसका? कि उनको नंदगांव में रहा नहीं जाता है, हाँ कुछ कुछ बहाने बना के, छद्म बना के, भेष बदल के, नाटक करके हमेशा यहाँ आते रहते हैं। अकेले खड़े रहकर लोग पूछते हैं, अरे क्या कर रहे हो भैया तू, काना क्या कर रहे हो? अरे नहीं, कंकड़ बिन रहे, काकर बिन रहे, मतलब कंकड़ निकाल कर रास्ता साफ कर रहा हूँ, लेकिन नजर किस पर है? कहीं से राधा रानी ना आ जाए, उनके नजर उनके दृष्टि के लिए दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। कहते हैं कृष्ण भगवान इस सांकरी कोर पे फूल बिछाते हैं, यहाँ से लेकर गहवर बन के अंदर तक फूलों की छैया बनाते हैं, और लेट जाते हैं तो अंधेरा होने की वजह से, बहुत घना जंगल होने की वजह से, और छोटी सी जगह होने की वजह से राधा रानी को दिखाई नहीं पड़ता है। तो एक बार राधा रानी के चरण कमल कृष्ण की छाती पर पड़े थे, और कृष्ण बहुत धन्य अपने को मान रहे थे। राधा रानी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने कृष्ण की छाती पर पाँव रखा, लेकिन छाती पर पाँव पड़े इसलिए कृष्ण वहां लेट चुके थे। तो ये सुंदर जगह है, यहाँ पर रोज की झिकझिक होती है, हाँ रोज की, रोज राधा रानी और गोपियां मटका लेकर आते हैं, रोज यहाँ पर कृष्ण रोकते हैं। कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी की जगह पर आप चल रहे हो, अपना हाथ अपना पैर अपना मुख कमल अपना शरीर सुंदर सुंदर लेकर जा रहे हो, ऊपर से दही भी लेकर जा रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो राधा रानी का तरफ से ललिता कहती है, अरे आपके पिताजी कुछ भी नहीं थे, विश्वभानु महाराज राधा रानी के पिताजी सब कुछ राजा थे, दया से और दोस्ती की वजह से उन्होंने आपको थोड़ा राज्य दे दिया, आपको राजा बना दिया, और उसी पर आप गर्व कर रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ हमारी आपकी सगाई कर दी तो हमको दहेज में पूरा ये सब जगह दे दिया, आप हमारी जगह पे चल के जा रहे हो। इस तरह से बहुत झिकझिक होती है, और बात करते करते कृष्ण भगवान मटका फोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी पत्थर के रूप में देख रहे हैं तो एक देखकर पिघल जाते हैं, तो जहां मटका फूटा है वहां पर भी निशाना है। देखिए यहाँ पर देखो कृष्ण भगवान खड़े होकर रोक रहे हैं। ललिता जी हरे साड़ी में है राधा रानी की तरफ से, राधा रानी गुलाबी साड़ी में है, और राधा रानी की तरफ से यहाँ पर झगड़ा कर रही है ललिता जी, तो सबसे तेज तर्रार है। और फिर देखिए मटका फूट जाता है, तो यहाँ पर ये शिला जो आपको दिख रहे हैं ना, आप वहां पहुंचेंगे कभी तो आपको पता चलेगा ये शिला आज भी चिकनी है और फिसलन पहाड़ी जैसी है, इट्स वेरी स्लिपरी, और सफेद रंग की शिला है, और ऊपर से कृष्ण ने यहाँ पर हाथेली में चाट चाट कर दही खाया था जो जमीन पर गिर गया था। तो इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं, सांकरी कोर को एकदम अच्छी तरह से देखिए, केवल एक व्यक्ति का एक समय एक दिशा में जाने का काम है यहाँ पर। यहीं पर राधा रानी ने और गोपियों ने एक बार सखाओं को थोड़ा सा उल्लू बनाया था, हाँ उन्होंने कहा था आज झगड़ा नहीं करेंगे, आज आपको फ्री में दे देंगे, जाके पहले दोना लेके आओ। तो वो पेड़ में चढ़कर पत्ता के दोना लेके आने के लिए चढ़ गए थे कि आज तो बिना झगड़े के मिलेगा, कितना आनंद की बात है। तो राधा रानी ने और गोपियों ने सभी सखाओं के कृष्ण बलराम की चुटिया जो है वो पेड़ को बांध दी थी। तो सब सखा लोग कृष्ण कृष्ण बलराम बलराम पुकार रहे थे, उनको आशा थी कि कृष्ण बलराम हर समय की तरह संकट में हमको बचाएंगे, लेकिन हुआ ये कि कृष्ण बलराम भी पुकार रहे थे, मधुमंगल श्रीदामा छुड़ा दो छुड़ा दो, अरे ससुर मैं मेरी भी चुटी यहाँ पर बंदी पड़ी हुई है। तो उसके बाद में यहाँ पर फिर एक ही शर्त पर उनको छोड़ा गया कि कल कृष्ण राधा रानी बनकर आएंगे, सारी ग्वाल बाल सखियां बनकर आएंगी, सर पे मटका लेकर, दही लेकर और मक्खन लेकर, और राधा रानी कृष्ण बनकर आएंगी और आपका मटका फोड़ेंगी। तो यहाँ पर फिर अगले दिन राधा रानी कृष्ण बनकर आई हैं, राधा रानी और कृष्ण भगवान राधा रानी बनकर आए हैं, सर पे मटका लेकर सखी बनकर, और राधा रानी ने डंडे से मटका फोड़ा है। तो ये चुटिया बंधन लीला है और ये मटकी फोड़ लीला कहते हैं उसको, राधाष्टमी के बाद में उसको वो यहाँ पर मनाते हैं। स्थान को प्रणाम करते हैं। दधि भाजन शीर्षास्था गोपिका कृष्ण रुंदिता तासाम गमागम औसानौ ताभ्याम नित्य नमश्चरेत। यानी इस स्थान पर सर पे दही के पात्र लेकर रोज राधा रानी और सखियां आती रहती है, कृष्ण उनको रोकते हैं। यहाँ पर हम नमश्चरेत ताभ्याम नित्य नमश्चरेत, नित्य हम इस स्थान को प्रणाम करते हैं जहाँ पर गोपिया क्या कहते हैं तासाम गमागम औसानौ आवागमन करते रहते हैं। इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम उतरते हैं गहवर वन में। देखिए कितना सुंदर वन है ये गहवर वन राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया है। सभी पेड़ बेलियां जितने भी पेड़ पौधे हैं सब राधा रानी ने अपने हाथ से लगाए हैं। बचपन में राधा और कृष्ण बड़े पेड़ों की शादी छोटे बेलियों से यहाँ पर करते थे। राधा रानी एंड कृष्ण वुड मैरी द ट्रीज विद द क्रीपर्स इन दिस प्लेस। देखिए और इसके बीच में गहवर कुंड है, राधा रस सरोवर। हाँ यहाँ पर एक सुंदर गीत है, प्यारी जू आगे चल गहबर बन भीतर जहाँ बोले कोयल री। स्वामी हरिदास बांके बिहारी की जो है उन्होंने ये पद लिखा है। राधा रानी को श्रृंगार करके कृष्ण एक हाथ से उनको पकड़कर अंदर ले जा रहे हैं वन में और एक हाथ से सवार रहे हैं बेलियों को सवार रहे हैं। लता बेली द्रुम को सवारा करेंगे उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, श्री राधे पुकारा करेंगे महल राधिका का गुहारा करेंगे। तो लता बेली द्रुम को सवारते हुए राधा रानी यहाँ पर कृष्ण का हाथ पकड़ के अंदर चले जाती है। इस कुंड में हर रोज राधा रानी स्नान करती है अपने 64 सखियों के साथ। जब वो स्नान करती है तो मोर कुटी से ग्वाल बाल उनको तन करने के लिए लड्डू फेंकते हैं ऊपर से। तो इसका दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर दर्शन है वन के बीच में। अभी रमेश बाबा जी के 46 साल के अथक संघर्ष से ये पूरा गहवर वन अभी वन विभाग में सुरक्षित कर दिया गया है। तो इस गहवर वन गंधर्वों को भी आनंद देने वाला है, इसका प्रणाम कीजिए। गहबराख्याय रम्याय कृष्ण लीला विधायिने गोपीरण रमण सौख्याय बनाय च नमो नमः। अर्थात हे गहबर बन आपको मेरा प्रणाम है, आप राधा रानी जुगल जोड़ी को और गोपियों को आनंद देते हो। यत्र गहबर कम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम नित्य केली विलासेन निर्मितम राधया स्वयं। हे सुंदर गहबर बन आपका अस्तित्व सुंदर सुंदर लीलाओं से भरा हुआ है राधा कृष्ण के, और आपने स्वयं इसको बनाया है। मैं आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस उत्कट जगह को, इस अति उत्कट स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ। और देखिए गहवर वन का दर्शन कीजिए। और हम लोग हमारे आई कैंप में हर साल यहाँ पर दीप दान करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। देखिए आप कितना सुंदर दृश्य है, हर कैंप में एक बार यहाँ पर हम लोग सब आई कैंप के सेवक लोग आकर झाड़ू लगाते हैं और स्वयं अपने हाथों से दीप प्रज्वलित करते हैं और 2 घंटा के लिए गीत गाते हैं राधा रानी को रिझाने के लिए। फिर गहवर कुंड का एक प्रणाम है स्पेशल, देव कृतार्थ रूपायै श्री राधा सरसे नमः त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। गंधर्वों को भी आनंद देने वाला, अपने आप को उनके भाग्य को बढ़ाने वाला ये कुंड है। ये तीनों लोकों को शुद्ध कर सकता है, इसलिए हम उनका आपको प्रणाम करते हैं। हे गहवर कुंड हम आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर मधुमंगल को बिठाकर सब गोपियों ने लड्डू खिलाए थे और मधुमंगल ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपका विवाह जो है वो मैंने पहले कहा था कि ऐसे बुड्ढे से होगा जिसके 7 पत्नियां पहले से होंगी, अभी मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, लड्डू खाकर तृप्त हो गया हूँ, तो आपका विवाह आपके मन में जो है उसी के साथ में होगा। तो ये मधुमंगल का सिंहासन इसी कुंड के किनारे पे है, उसको भी आप प्रणाम कीजिए। ये सुंदर चटपटी लीलाएं यहाँ पर होती रहती है। आगे हम पीले पोखर जाएंगे, थी, फिलिपो पर इतना मधुर स्थान है, इतना मधुर स्थान है, क्या कहें आपको। यहाँ तो हम 2.5 घंटा प्रवचन करते हैं, जब बैठते हैं आई कैंप में लोगों को लेके आते हैं, हर रोज हमारे आई कैंप के सेवक लोग यहाँ पर आकर झाड़ू लगाते हैं, और साल में एक बार आई कैंप में यहाँ पर भी दीप दान करते हैं। तो पहले दर्शन कीजिए और गौर से देखिए पीली पोखर के किनारे में कौन खड़े हैं, वो है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। उनके साथ में हमें वहां पर अनंत बार जाने का भाग्य मिला है, तो इस बार ये पिछले ही बार का है, एक साल पहले का, अपना 6 महीने पहले का है। तो उसको प्रिया कुंड भी कहते हैं। और क्या क्या लीला है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पीलू के पेड़ हैं। वृष भानु जी का ये प्राइवेट कुंड है, और यहाँ पर शिव जी महाराज आए थे दर्शन करने के लिए, तो राधा रानी ने वहां पर उनको आशीर्वाद आश्रय दिया है, तो उनको प्रियेश्वर महादेव के रूप में जानते हैं, जो यहाँ पर पीली पोखर के किनारे में रहते हैं। और यहीं पर राधा रानी की जो भी वो जगाई हुई थी उनकी नंदगांव में, माता जी ने उनको हाथ में हल्दी लगाई थी, तो यहाँ पर आकर राधा रानी ने हाथ धोए थे। देखिए आप, राधा रानी यहाँ पर हाथ धो रही है हल्दी के हाथ, तो पूरा कुंड पीला हो गया था। तो कृष्ण भगवान इसमें आए थे, इसमें उतर गए तो वो भी पीले हो गए थे, और एक दिन तक ऐसे भाव में रहे कि कृष्ण होते हुए भी राधा भाव में आ गए, और कृष्ण कहाँ है, श्याम सुंदर जी कहाँ है, श्याम सुंदर जी कहाँ है, ऐसे दिन भर पूछते रहे। वी कॉल इट एज आइडेंटिटी क्राइसिस। राधा रानी के पीले किए हुए जल में प्रवेश करते ही ऐसा उनके अंदर परिणाम हुआ कि वो राधा भाव में आ गए, स्वयं राधा ही बन गए। देखिए इस कुंड में प्रवेश करते ही कृष्ण पीले हो गए। और यहीं पर इसी जगह पर होली का आरंभ होता है, उसका होली का भी आपको मैं चित्र फिल्म दिखाऊंगा। होली भी यहाँ पर होती है और होली का आरंभ यहाँ पर होता है, होली का नौता न्योता यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर कृष्ण होली में हार जाते हैं तो कृष्ण का मुंह काला कर देते हैं, कृष्ण राधा रानी के चरणों में गिरते हैं और उनको दान देते हैं, उसको कहते हैं फगुआ। फगुआ यानी होली में जो हारते हैं वो अलंकार, वस्त्र, पैसे, स्वर्ण की मोहराएं गोपियों को देते हैं और गोपी के चरणों का आशीर्वाद लेते हैं। तो आइए मैं आपको अभी थोड़ा सा विश्राम लेकर अभी मैं आपको वो फिल्म दिखाता हूँ। लट्ठा मार होली, जय हो। लट्ठामार होली, जय हो लट्ठामार होली की। सब बरसाने की जो गोपियां हैं वो नंदगांव के हरियारों को बहुत पीटते हैं यहाँ पर। जय श्री राधे। बड़े प्रेम से ग्वाल बाल यहाँ पर मार खाते हैं और बाद में चरणों में गिरकर सखियों को दान देते हैं। राधे किशोरी दया करो। हरे कृष्णा। ऐसा सुंदर यहाँ पर दर्शन है कि हमने बालकनी में बैठकर उसका दर्शन किया था, इसलिए वहां से फिल्म निकाली थी इसको। तो ऐसे लट्ठा मार, लड्डू मार, छड़ी मार, अलग प्रकार की होलियां यहाँ पर 45 दिन के लिए खेली जाती हैं, लेकिन रंगीली रंगीली होली के समय यहाँ पर ये दृश्य होता है। देखिए आप, तो ये सब जो है ये पीली पोखर पे होता है। राधा रानी यहाँ पर हाथ धोती है और बहुत बहुत सुंदर लीला। नारद मुनि यहाँ पर आए थे, ये होली का चित्रपट है आपके लिए, आपको सबको दिखाई पड़ रहा है ना, अंगूठा ऊपर कीजिए और दिखाइए। आर यू एबल टू हियर मी, सबको सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये होली का चित्रपट है, बरसाने में होली का आरंभ होता है, विश्व भर में प्रसिद्ध है यहाँ की होली। श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी मिलकर होली खेलते हैं, ओके तो इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर एक सुंदर और एक लीला है, नारद मुनि यहाँ पर आए थे राधा रानी का दर्शन करने के लिए। एक बार जन्म के समय आए थे, बाद में बड़ी होने के बाद आए थे, तो राधा रानी का दर्शन देखकर इतने मोहित हो गए, भ्रमित हो गए, और राधा रानी के हाथ में कुछ मेवा थे, उन्होंने कृष्ण को वो, राधा रानी ने वो मेवा जो है नारद मुनि को दे दिए। नारद मुनि बड़ी बड़ी आंखों से उनको देख रहे थे, वो भाग भाग कर मैया के गोद में गई। मैया देखो बाबा आ रो है, बड़े घूर घूर से देख रो है। तो मैया ने कहा बेटी यही तो महाराज जी हैं जो आपके जन्म के समय आपको गंडा बांधकर चले गए थे, आशीर्वाद देकर चले गए थे, इनकी कृपा से आपकी आंखें खुली थी। तो फिर लेकिन फिर भी वो सहमी सहमी सी थी, माता जी को बिलक बिलक कर दूर दूर से राधा रानी नारद मुनि को देख रही थी। तो नारद मुनि जी को यहाँ पर बड़ी कृपा प्राप्त हुई थी और उन्होंने राधा रानी के यहाँ पर दर्शन किए। तो इस तरह से इस सुंदर स्थान का आनंद लेते हुए आगे चलते हैं, जिसका नाम है भानुखर। तो भानुखर ये बड़ी विशेष जगह है, ये राधा रानी के पिताजी का जल महल है। यहाँ पर गर्मी के समय आकर उस महल में बैठते हैं जो जल के अंदर बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा बहती रहती है, पानी की तरफ से निकलते है। राधा रानी यहाँ पर अपने गिने चुने सखियों के साथ स्नान करती है। और एक बार यहाँ पर स्नान करते हुए कृष्ण आए थे और पूछताछ कर रहे थे, ललिता रानी ने बहुत कठोर शब्दों से उनको उत्तर दिया, तो राधा रानी को क्रोध आया, तो वो बाजू में हो गई, मैं आपसे बात नहीं करती, आपने उनके प्रश्न का इतना कठोर उत्तर दे दिया, हरे कृष्णा। तो फिर कृष्ण भगवान ने छलांग लगाई इस जल के अंदर, और जल के अंदर जाकर राधा रानी के चरणों को यहाँ पर उन्होंने छुआ है। यही सुंदर लीला है। इसी भानुखर यानी वृष भानुकुंड के किनारे पे कंस जो है वो मथुरा से घोड़े पर बैठ के आया था, राधा रानी के इच्छा से कंस यहाँ पर गोपी बन गया था, यानी कि स्त्री बन गया था, और उनका घोड़ा भी घोड़ी बन गया था। 6 महीने तक राधा रानी के सखियों ने जो कन्या बने हुए कंस को, जिसको उन्होंने मोटल्ली गोपी करके चिढ़ाया था, मोटी गोपी करके चिढ़ाया था, और 6 महीने तक सभी सखियों ने कंस जो कन्या बन चुके थे, इसका नाम कंसनी गोपी, उस कंसनी गोपी से कंडे लिपवाए थे, 6 महीने तक कंडे लिपवाए। उसके बाद राधा रानी ने उनको क्षमा कर दी और जावट में किशोरी कुंड में स्नान करवाया, और फिर उसके बाद दोबारा पुरुष शरीर प्राप्त किया, फिर कंस वहां से भाग गए, दोबारा कभी लौट के नहीं आए। इसका कारण मैंने आपको पहले बताया है, अति अंतरंग अति उत्कट लीलाओं को संपन्न करने के लिए यहाँ पर राधा रानी ने कंस को भी कन्या बना दिया। कंस को यहाँ पर गोपी शरीर प्राप्त हो गया, परम सिद्धि प्राप्त हो गई, लेकिन उसकी मति जो है ना वो मारी गई थी, मति भ्रष्ट थी उसकी, इसलिए गोपी बनने के बाद में सब गोपियां तो गीत गाते हुए गोबर का कंडा बना रही हैं, ये रोते रोते कंडा बनाता रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ में आई कैसी है कि हम हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा भी हो गई ना तो भी कभी काम नहीं देगी हमको, अगर हमारी चेतना हमारी भावना सही नहीं होगी। अगर भावना सही होगी तो हर एक कृपा का पूरा लाभ होगा। तो कंस तो हम लोग सब गोपी बनना चाहते हैं, राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं, तो अनायास ही फ्री में गोपी बन गया था, लेकिन मन उसका सही जगह पर नहीं था, इसलिए वो गोपी बनने के बाद भी 6 महीने रोते 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 उसने कंडे लिपवाए। राधा रानी ने उसको चेतावनी दिया, वार्निंग दिया, दोबारा आओगे तो लाइफ लॉन्ग तुम्हें कन्या बना के रखूंगी। इसलिए कभी भी कंस दोबारा मुड़कर नहीं आया, ना उसके आदमी वहां पर आए, बरसाना नंदगांव और जावट इस इलाके में। तो यही वो भानुखर है जहां पर कंस कन्या बना था। बहुत पावरफुल जगह है, राधा रानी चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, महाप्रतापी है वो, इसका प्रमाण ये कुंड है। इसका दर्शन कीजिए, आचमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमें भी राधा रानी जब चाहे आपकी सेवा में ले लो, हमें कुछ संकोच नहीं होगा, जैसे कंस को हुआ था वैसा संकोच हमें नहीं होगा। तो भानुखर को प्रणाम कीजिए। निर्धूत क्लिबिशैव गोपराज कृतायते वृषभानु महाराज कृताय सरसे नमः। हे भानुखर, वृषभानु महाराज ने आपको बनाया है, यहाँ पर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मैं आपको वंदन करता हूँ। फिर हम आगे जाएंगे, ये वृषभानु महाराज की तपस्थली है, यहाँ पर वृषभानु महाराज तपस्या करते थे। ये ब्रजेश्वर महादेव हैं, ये खेत में हैं, ये पाताल तक भी उनका एंड नहीं मिलता है। सपने में आकर उन्होंने किसान को बताया था कि आप मुझे खोदोगे तो पाताल तक मेरा एंड नहीं पाओगे, मुझे यही रहना है। तो उस किसान ने फिर खेत में ही कुछ 50 साल पहले इनका मंदिर बनाया। ये वन मंदिर जो है ब्रजेश्वर महादेव का, ये पाडर वन में है, जहाँ पर राधा रानी अपने सांझी उत्सव में फूल बिनने के लिए उस पाडर वन में आती है। वहां पर कृष्ण ने मुरली बजाई थी, वर्षा हुई थी, मोर नाचे थे, कृष्ण के सारे वस्त्र गीले हो गए थे, तो गोपियां कहती है देखो देखो मुरली कितनी भाग्यवान है, हाँ इतना गीला होने पर भी बज रही है, कृष्ण के होठों के अमृत को नहीं छोड़ रही है, ऐसे संवाद यहाँ पर हुआ था। इसी की थोड़ा आगे एक रावण वन है, यहाँ पर गोपियों ने कृष्ण को रबड़ी खिलाई थी, इसलिए इसका नाम रावण वन है। तो रावण वन पाडर वन में ये ब्रजेश्वर महादेव है। ब्रजेश्वर महादेव बड़े बड़े आशीर्वाद देने वाले हैं, आप बड़े हृदय से उनको प्रणाम करना। भानुखर से देखिए, ये जो भानुखर है ना, यहाँ से जल लेकर ब्रजवासी एक दो किलोमीटर अंतर है चल के इसी शिवजी पर चढ़ाते हैं, ये व्रत के रूप में लेते हैं, अधिक मास है वैसे व्रत के रूप में ये व्रत लेते हैं, भानुखर का जल आकर ब्रजेश्वर महादेव पर चढ़ाते हैं। सब लोग बड़े प्रेम से दर्शन करना, हम कैंप में हर सोमवार को यहाँ जाते हैं और प्रणाम करके आते हैं। ये कार्तिक में हमने दीप दान किया था यहाँ पर महाराज जी की यात्रा के समय, और ब्रजेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं। ब्रजेश्वराय ते तुभ्यम मथुराध्राय ते नमः, ब्रजौ कसाम शिवार्थाय नमस्ते शिवरूपिणे। हे ब्रजेश्वर महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप ब्रजवासियों के लिए बहुत ही पवित्र हो। फिर हम जाते हैं प्रेम सरोवर, हाँ यहाँ पर जाने बिना हमारी यात्रा संपन्न नहीं हो सकती है। ये राधा और कृष्ण से, कृष्ण के अश्रुओं से बना हुआ है, मधुमंगल के बीच में आने से उन्होंने कहा कि मधु को, यानी वो जो भ्रमर है ना, भूंगा क्या कहते हैं, बम्बल भी, उसको हटा दो हमारे बीच में से। तो मधुमंगल ने उस भ्रमर को हटा दिया तो और कहा कि मधु चला गया, तो राधा रानी को लगा कि कृष्ण चले गए, उनका भी एक नाम मधु है ना, तो रोने लगी वो, एक दूसरे की आंखों में देखकर बैठे थे तो रोने लगी राधा रानी, तो कृष्ण को भी रोना आया, फिर कृष्ण को रोते हुए उनको भी ज्यादा रोना आया, दोनों के रोने से यहाँ पर एक कुंड बनाए। तो ये प्रेम वन में है, इस प्रेम वन में राधा रानी लुका छुपी खेलती है, और इस प्रेम वन में ये प्रेम सरोवर बना है, बहुत उत्कट स्थान है, प्रेम के अश्रु बहने के बाद में बना हुआ है। इसी प्रेम वन में राधा रानी और कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था, ललिता देवी ने उनका प्रथम मिलन श्रृंगार करवा के यहीं पर प्रेम वन में कराया था। ऐसा सुंदर वन है प्रेम वन को, आप प्रणाम कीजिए, आचमन कीजिए, स्नान कीजिए मन से, और बहुत उत्कट स्थान है, बहुत रमणीक स्थान है ये, देखिए आप कितना सुंदर स्थान है, अष्टकोणी कुंड है, बहुत सुंदर सुंदर दर्शन है यहाँ पर। ललिता प्रेम संभूते प्रेमा प्रेमारव्य स्पर्शरसे नमः, प्रेम प्रदाय तीर्थाय कौटिल्य प्रदनाशक। इसका महिमा ऐसा है कि यहाँ पर आचमन करने से, देखिए यहाँ पर इस जल में आचमन करने से मन में जो होता है ना कुटिल स्वभाव, यानी क्रुकेड नेचर, वो नष्ट हो जाता है। ये इस प्रणाम मंत्र का अर्थ है कि आप बड़े दयालु हो, ललिता के द्वारा निर्मित हो, अश्रुओं के द्वारा निर्मित हो, आपका जल का स्पर्श करने से मन का जो कुटिल स्वभाव है वो नष्ट हो जाता है। इसके आगे और एक सुंदर कुंड है, इसका नाम है प्रेम विवल कुंड, और इसकी छोटी कहानी बताना जरूरी है। ये भी अश्रुओं से बना है लेकिन थोड़ा भाव डिफरेंट है। यहाँ पर राधा रानी यहाँ पर देवी को ढूंढ रही थी तो कृष्ण यहाँ देवी बन गए, राधा रानी देवी को ढूंढ रही थी देवी मिल गए, तो कृष्ण ने राधा रानी ने पूजा करना शुरू किया तो पूजा करते करते देवी ने आंख मीच ली और मुस्कान बनाई मुंह पे, तो राधा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, गौर से देखा तो देवी वही कुछ नहीं है, स्वयं कृष्ण है। तो वो देवी बने कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर है, उसका नाम है विवला देवी, प्रेम विवल कुंड। तो भाव से विवल हो गए, वो प्रेम से विवल हो गए और दोनों के आंखों से अश्रु आए। राधा रानी ने जब समझा अरे ये तो कृष्ण है, तो उनके आंखों में प्रेम अश्रु आए, कृष्ण के आंखों से भी अश्रु आए, और ये दोनों के प्रेम अश्रुओं से ये कुंड बना है जिसका नाम है प्रेम विवल कुंड। ये संकेत वन में है। फिर हम चलते हैं हमारे गतिविधि में बरसाने के, हाँ ये हमारा राधा माधव आश्रम में हमारा अस्पताल है, यहाँ पर हर साल हम लोग कैंप करते हैं, साल भर भी सेवा करते हैं, कैंप में 1100 ऑपरेशन करते हैं। तो ये कुछ सेवा के चित्रपट है, तो आप देखिए आप बिना भेदभाव के कीर्तन के साथ, हाँ प्रवचन के साथ प्रसाद लोगों को बांटते हैं, बहुत सुंदर ऑपरेशन करते हैं, लेंस डालते हैं, 40 दिन की दवा देते हैं। तो अभी क्या हो गया कि जगह छोटी पड़ गई है, अभी हमने 5 एकड़ की जगह ले ली है, हाँ ये चिकसोली गांव में है। पहले मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसका वर्णन करता हूँ। सुंदर सुंदर फिल्म है मेरे पास, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये गोवर्धन रोड से 1 किलोमीटर के अंतर में है, और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के एमपी है उनके फंड से ये रास्ता बना हुआ है। 1 करोड़ 60 लाख रुपए में उन्होंने ये रास्ता बनाया हमारे लिए, बहुत दिनों से जमीन लेकर रखी थी। तो देखिए ये सुंदर रास्ता सीमेंट कंक्रीट का बन गया है अभी। जय हो। ओके ओके, लेट मी ट्राई 1 मिनट, हाँ, गिव मी अ मिनट। बरसाने की गलियन में डोले कान्हा बावरो, कान्हा बावरो। अभी सुनाई पड़ रहा है? कैन यू सी नाउ?
Some glasses, 40 days medicines and in addition to loving gift of blankets and footwear. The car is not